ओम शांति। आप सभी योगी हो, सभी योगी हो, सच्ची बात है, सभी योगी हो, अवश्य हम सब योगी हैं, सभी योगी हैं, क्योंकि किसी ने किसी के साथ योग हमारा जुटा हुआ है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात जो मन में आती है, जिसके विषय में हम विचार करते हैं, सोचते हैं, उसके साथ हमारा योग है। योग का अर्थ है संबंध, जोड़, मिलन। तो मन से तो मिलन हो ही जाता है जिसको हम याद करते हैं। तो योगी तो हम सब हैं, लेकिन आप यहां आए हो राजयोगी बनने के लिए। तो योग का अर्थ है मिलन, और राजयोग का अर्थ है उस सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे न्यारा, सबका प्यारा, निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा से आत्मा का मिलन। और इस मिलन के लिए जो ऊर्जा काम करती है वो भी मन ही है। इसलिए भगवान के महावाक्य हैं, इस मन को मेरे में लगाओ। तो जो सबसे ऊंचे से ऊंचा परमात्मा में मन लगाना, ये राजयोग है। और जो विधि इसमें है वो भी सबसे श्रेष्ठ है, राज माना राजा। तो जिस विधि से परमात्मा से योग लगाते हैं वो भी सबसे श्रेष्ठ है। बहुत ही सरल विधि है, जिसमें कोई शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं। नहीं तो मनुष्य देखो कितना कष्ट उठाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा अभी चल रही है, कितना कष्ट उठा के जाते होंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मंदिर स्थित होते हैं, एक सेकंड का दर्शन करने के लिए जाते हैं, कई बार तो कितने घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कई बार ऐसे भी हमने देखा है, कहीं जाते हैं दर्शन करने, अपने आप को, शरीर को कितना कष्ट दे करके जाते हैं, यहाँ तक कि कलाबाजी करके जाते हैं, शरीर को मोड़ मरोड़ कर न जाने क्या क्या तकलीफें खुद को देते हैं, तब जा करके मंदिर तक पहुँचते हैं। बहुत देखा है मैंने साउथ इंडिया में। लेकिन भगवान तो मेरा पिता है, उस पिता से मिलने के लिए हम इतना अपने आप को कष्ट क्यों दें? कोई पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे से मिलने के लिए कष्ट उठाए, चाहेगा क्या? एक छोटा बच्चा होता है, मान लो पिता से मिलना चाहता है, पिता तो होगा 6 फीट का, बड़ा है, और बच्चा तो हो सकता है 2 फीट का हो, अभी छोटा है। अब वो अपने पिता से मिलना चाहता है तो पिता तक तो वो पहुंच नहीं पाएगा, स्थूल हम उदाहरण देते हैं। तो पिता थोड़ी देख चाहेगा कि बच्चा कष्ट उठा करके मेरे से मिले, पिता क्या कहेगा, वो खुद ही झुक जाएगा, झुक करके अपने बच्चे को उठाएगा, उसका बच्चा है ना। वो देख नहीं सकता कि उसके बच्चे को कष्ट हो पिता से मिलने के लिए, वो खुद ही जाएगा, झुकेगा, बच्चे को उठाएगा और कई बार बच्चों से खेलते भी हैं पिता, कंधे पर बिठाएगा, कहेगा देखो बेटा तुम तो मेरे से भी लंबे हो गए हैं। बच्चे को कंधे पर बिठाएगा, सिर पर बिठाएगा और उसको इतना खुश रखेगा, हंसाएगा, नचाएगा छोटे बच्चों को, तो वो खुद ही जाएगा, न कि बच्चे को कष्ट देगा कि तुम पिता से कष्ट उठा कर मिलो। तो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा कहते कोई कष्ट की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सहज योग सिखाता हूं। सहज विधि क्या है? तीन प्रकार का की समानता का चिंतन सबसे सहज विधि है। कोई स्थूल रूप में मंत्र, माला या मूर्ति वो भी नहीं है, क्योंकि ये सब करते 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 हम ईश्वर के निकट नहीं पहुंचे। इसीलिए कबीर का वो दोहा याद आता है, कर का मन का फेरत युग भया, युग बीत गए हाथ के मन के फेरते फेरते उंगलियां भी घिस गई। कर का मन का फेरत युग भया, पर फेरा न मन का फेर। मन का फेरा फिर भी नहीं फिरा, वो भटकता ही रहता है मन। अब कर का मन का छोड़कर कौन सा मन का फेरो? मन का फेर। तो मन का कौन सा होता है? वो राजयोग हमें सिखाता है कि तीन बातों की समानता का चिंतन करते हुए मिलन का अनुभव करना है। आपको सवेरे बताया था, स्वरूप में समान हूं मैं, परमात्मा ज्योति बिंदु तो मैं भी ज्योति बिंदु, एक ही घर के वासी हैं, वही धाम है हम आत्माओं का, जो पिता परमात्मा का धाम है, मैं आत्मा भी उसी परम धाम शांति धाम की निवासी हूँ। मन से एक सेकंड में मैं वहां पहुंच जाऊं, चिंतन करूं कि मैं आत्मा तो उस परम धाम की वासी हूँ, जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश और शांति शांति, मैं आत्मा सब बंधनों से मुक्त हूँ। उस परम धाम में आत्मा को कोई बंधन नहीं, जैसे इस सृष्टि पर जन्म मरण कर्म फल पाप पुण्य सुख दुख ये सब बंधन है, चक्र में आते हैं तो बंधन महसूस होता है, आत्मा वहाँ इन सब से मुक्त है। इसीलिए आत्मा को मुक्ति की इच्छा होती है, हे भगवान बस मुझे मुक्ति दो। तो इसीलिए मन से एक सेकंड में मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल देते हैं कि एक कबूतर है, वो बिल्ली को देखता है, पर बिल्ली को देखते ही डर जाता है कबूतर, कहता है बिल्ली आ गई मेरे को खा जाएगी। लेकिन उस समय ये भूल जाता है कि बिल्ली तो धरती पर है, पर मैं तो पंछी हूँ, मेरे पास तो पंख हैं। तो वो उस समय अपने पंखों को भूल जाता है और डर के मारे आंखें ही बंद कर देता है, ये बिल्ली खा जाएगी तो देखेगा ही नहीं तो डरेगा नहीं, ये सोचकर। लेकिन उस समय अगर वो उड़ जाए तो बिल्ली खाएगी उसको? तो बिल्ली तो उड़ नहीं सकती है, वो तो धरती पर ही है, पर ये भूल जाता है। तो मैं आत्मा भी ये भूल जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ और अपने आप को ये देह समझ बैठती हूँ, तो परिणाम स्वरूप बंधन में बंध जाती हूँ। लेकिन मैं तो एक आत्मा, एक ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ, देह से न्यारी हूँ। तो एक सेकंड में बुद्धि के द्वारा मन को दिशा मिल जाए कि मैं आत्मा तो उस परम धाम की वासी हूँ, एक सेकंड में उस धाम की वासी बन जाऊं और महसूस करूं कि सब बंधनों से मैं मुक्त हूँ, मेरा इस संसार में कुछ नहीं है। अब जैसे देखो मुझे उठना है, अब मैं उठना चाहूंगी तो अगर इस गद्दी से मेरा मोह होगा, इन सब चीजों से मोह होगा, तो इनको उठा के थोड़ी मैं उठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, ये गद्दी को पकड़ करके उठ सकती हूँ मैं? अगर उठना होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बस छलांग लगा दो, कूद जाओ, बाहर आ जाओ। अगर मैं सोचूं मोह है तो मैं कितनी भारी हो जाऊंगी, कैसे उठ सकूंगी। लेकिन अगर मुझे हल्का होना है तो इसका तो मोह तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ो तो छूटो। जैसे एक मिसाल दूसरा भी देते हैं कि एक पक्षी वो टहनी को जोर से पकड़ के बैठा है, जोर से अपने पंजों से पकड़ा हुआ है जोर से, और देख रहा है दूसरे पंछी तो उड़ रहे हैं, क्योंकि पंछी का तो बसेरा आकाश होता है। वो देख रहा है कि सब उड़ रहे हैं, कहता है मुझे भी कोई छुड़ाओ, मुझे भी कोई छुड़ाओ, मुझे भी कोई छुड़ाओ। वो पंछी कहते कितना मूर्ख है, पकड़ा है खुद। ऐसे नहीं कि किसी ने उसको बांधा है, पकड़ा है खुद और चिल्ला रहा है मुझे कोई छुड़ाओ। पंजा छोड़ो, पंख तो है, तुम पिंजरे में थोड़ी कैद हो। अगर कोई पक्षी पिंजरे में कैद भी होता है, मान लो वो इंतजार करता रहता है कि कब ये पिंजरा खुले, और अगर भूल से खुला रह गया पिंजरा तो आपको दूसरे क्षण मिलेगा पंछी कैद में, ना? वो तोड़ जाएगा, उसको क्यों, पिंजरे से क्या मोह है। चाहे सोने का पिंजरा हो, चाहे कैसा भी पिंजरा हो, दाना क्यों न पड़ा हो, दाना वहीं का वहीं, वो तोड़ गया। तो आत्मा भी मैं पंछी हूं, ये मैं भूल गई हूं, और देह ही समझ बैठी हूं खुद को, इसलिए हदों में फंस गई हूं। अब ये राजयोग हमें इन हदों से निकालना सिखाता है कि अपने आप को इस देह से न्यारी शक्ति पहचानो, आपका घर परम धाम है ये पहचानो, आपका पिता परमात्मा है जिसको आपने हर जन्म में याद किया है पहचानो। अब वो पहचान भी स्वयं परमात्मा ही देते हैं, तो मन से एक सेकंड में ऐसे न्यारे बन सकते हैं अभ्यास करने से, जिसको वैराग्य कहा कि मेरा कुछ नहीं है, एक सेकंड में न्यारे हो गए शरीर में। जैसे कोई बड़ा रोगी है, इतना कष्ट है, कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, चिल्लाता है और समझो उसी वक्त उसका हार्ट फेल हो गया, एक सेकंड में शांत हो गए, एकदम सन्नाटा हो जाता है, सब कुछ शांत, आत्मा उड़ गई। तो आत्मा को हर जन्म में देह से न्यारे होने का, निकलने का अभ्यास है। इसीलिए कई लोग मरने से डरते हैं, क्योंकि अगर शरीर का अभिमान है, मोह है, रगे बहुत जुटी हुई है संसार से, तो क्या होगा, कष्ट होगा। जैसे शरीर को, शरीर पर अगर कपड़े पड़े हैं जो बहुत टाइट है तो क्या होता है, पहले जमाने में चूड़ीदार पहनते थे, इतनी टाइट चूड़ीदार, एक 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 वो सलवट को निकालना पड़ता था, अगर निकालना है या चढ़ाना है, कितना टाइट होता था। इसलिए जितना ढीला होता है उतना सहज है निकालना चढ़ाना। तो आत्मा भी देह से न्यारी स्थिति का अनुभव जीते जागते करे। रोज रात को तो हम आधे मरी जाते हैं, नहीं नहीं मर जाते हैं, जब गहरी नींद आती है तो पता चलता है। हमने तो देखा है कई लोग इतनी गहरी नींद आती है, सोएंगे मानो वहां तो जागेंगे तो वहां, हाँ पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं नींद में, नींद में अरे ये सोए कहां थे और अभी कहां पड़े हो, वो कहां रोल होते जाते हैं, पता नहीं कोई चलते भी है कोई बोलते भी और उसको कुछ पता नहीं है, होश तो होता नहीं, इतनी गहरी जब नींद होती है। तो गहरी नींद में जैसे अधमरे ही है ना, नहीं तो रोज रात को मरते तो है ही है ना, कि नहीं मरते हैं, मरते हैं ना, तो उस समय डर लगता है कि हाई मर जाएंगे। तो जैसे वो नींद भी आधा मरना ही है। यहां बाबा कहते हैं, शिव परमात्मा कहते हैं, जीते जी मरना है। जीते जी मरने का मतलब क्या है, शरीर में तो है चेतन तो क्यों नहीं है, भान है सब कुछ है, लेकिन मन से एक सेकंड में न्यारे, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो जैसे मन की आंख उसको ही देख रही है, कितना प्यारा है, सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य है, अविनाशी है, शिवम है, कल्याणकारी है, उनसे ही मुझे सर्व प्राप्ति है, वही सुंदर है, सर्व गुणों में सुंदर है। इसलिए जो सुंदर चीज है वो आकर्षित होती है, हा? करती है ना आकर्षित सुंदर चीज, क्योंकि आत्मा स्वयं भी सुंदर है, परमात्मा भी सुंदर है, गुणों में सुंदर है। तो राजयोग अर्थात उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से आत्मा का मिलन, सर्वश्रेष्ठ विधि के द्वारा मिलन, जिस विधि में परमात्मा के प्रति ऐसी लगन लग जाए जो मन में और कोई याद ना आए, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विधि द्वारा मिलन और सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति इस राजयोग में है। सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति क्या प्राप्ति है इस मिलन से? मुक्ति और जीवन मुक्ति, यही हम चाहते हैं। हम मुक्ति भी चाहते हैं, बस मुक्त हो जाऊं सर्व बंधनों से, पर जीवन मुक्ति भी चाहते हैं। जीवन मुक्ति क्या होती है? जीवन में रहते भी मुक्ति चाहते हैं, बंधन कोई नहीं चाहता है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ही स्वतंत्र है। इसलिए बंधन कोई नहीं चाहता है, एक जानवर भी बंधन नहीं चाहता है, इंसान की तो बात छोड़ो। तो इसीलिए हम आत्माएं है ही मुक्त स्वतंत्र, पर वो स्वतंत्रता में जीवन भी चाहते हैं, और वो जीवन जिसमें मुक्ति का भी अनुभव होता था वो देवताओं की जीवन है। नर नारायण समान, नारी लक्ष्मी समान बन जाए, मानव देव बन जाए, ये इतनी बड़ी प्राप्ति है। तो इस राजयोग से क्या प्राप्ति होती है? हम राजा बन जाते हैं, एक राजा अर्थात अपने इंद्रियों का राजा, क्योंकि जैसे आत्मा का ज्ञान हमें मिला कि मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, तो राजा हूं इंद्रियों का। इन इंद्रियों को मैं जैसे चलाना चाहूं मैं मालिक होकर के चलाऊं, जैसे गाड़ी का ड्राइवर मालिक होकर के गाड़ी को चलाता है, तो गाड़ी चलाना तो कितना सुखद अनुभव देगा। आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ना है, साइड में जाना है, जो कुछ भी करना है, ब्रेक दबानी, एक्सेलरेटर दबाना, सब व्यवस्थित है और सब पर पूरा कंट्रोल है, तो गाड़ी चलाना तो बहुत आनंद प्रदान करता है। तो ये जीवन कोई बुरा नहीं है, जीवन तो भगवान का दिया हुआ वरदान है। बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते, भगवान ने दिया, तो वरदान भगवान का है ना। तो ये मानव जीवन इतना बड़ा वरदान है ईश्वर का, लेकिन हम इसको कौड़ी बदले गंवा रहे हैं, क्योंकि हम स्मृति के बजाय विस्मृति में आ गए हैं। और सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद शक्ति, ये जो आत्मा का मूल स्वभाव है, वो मेरे पास ही निहित है, वो मेरे अंदर ही है, हम ये भूल गए हैं। इसलिए दुख शांति कष्ट पीड़ा तकलीफ विघ्न समस्याएं, इसमें हम अपने आप को घेरते जाते और बंधनों में बांधते जाते हैं। और अगर ये सब जीवन में है तो जीवन एक अभिशाप बन जाता है, एक बोझ बन जाता है। जैसे कोई बोझ सिर पर कोई लादे हुए हो तो लगेगा कब मैं मंजिल पर पहुंचूं और ये बोझ उतारूं, सोचता ही रहेगा कितनी दूर और है मंजिल। लेकिन अगर जीवन वरदान महसूस होगा तो जीवन में खुशी प्रेम आदि सद्गुण है, तो सचमुच लगेगा ये जीवन तो भगवान का दिया हुआ कितना सुंदर वरदान है। हम जितना इस शरीर में होंगे उतना भगवान को और याद कर सकेंगे। तो इसलिए राजा बनना माना इंद्रियों का राजा, फिर मन का राजा, मन को हम जहां दिशा देना चाहें हम उसे दिशा दे सकते हैं, जो सोचना चाहें वही हम सोचें। तब कहेंगे मन का भी राजा। और फिर उसके बाद हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हो जाए जो हम सबका दिल भी जीत सके, क्योंकि गुण बांट रहे हैं अपने कर्म से, वचन से, मन से, तो सबका दिल जीत सकेंगे, अथवा सबका, सबके दिलों का राजा। और जो सबके दिलों का राजा बन जाता है वो तो विश्व का भी राजा बन सकता है। बाहुबल से कोई विश्व का राजा नहीं बन सकता है, हथियारों के बल से, डर के बल से, युद्ध के बल से कोई भी विश्व का राजा आज तक नहीं बना, लेकिन सबका दिल जीतने से अवश्य वो विश्व का ताज भी ले सकता है। तो ये राजयोग वो हमें विधि बताता है जिससे सबका दिल जीतकर नर नारायण बन जाए, नारी लक्ष्मी बन जाए, मानव देव बन जाए, ये हमको लक्ष्य मिलता है। तो इस राजयोग को अगर हम सरल शब्दों में परिभाषित करें तो कह सकते हैं राजयोग अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति, ये राजयोग है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति राजयोग है। और स्मृति शब्द को और सरल अर्थ दे, स्मृति माना याद। अब याद तो हम भगवान को करते ही हैं। आप कहेंगे बहन जी कौन सी नई बात है, भगवान को तो हम याद करते ही हैं। लेकिन याद एक होता है करना। हम किसके लिए कहते हैं, हमने फलाने को, हम फलाने को बड़ा याद कर रहे हैं। दूसरा होता है याद आना, किसी की याद हमें आती है, किसी को याद करते हैं। और तीसरा होता है किसी की याद सताना, इतनी सताती है उसकी याद जो हम भूल ही नहीं पाते हैं उसको। अब ये तीनों प्रकार की यादें इस संसार की यादें हैं, लेकिन परमात्मा की याद केवल ऐसी न हो जो आने वाली हो या करने वाली हो, सताने वाली हो, नहीं, ये चौथी प्रकार की याद है। आने वाली याद कौन सी होती है, करने वाली याद कौन सी होती है, सताने वाली कौन सी होती है, थोड़ा ये सो देखें। हम किसके लिए कहेंगे, अरे आपको मैंने आज इतना बड़ा इतना याद किया, अच्छा हुआ आप आ गए, आपको बड़ा याद कर रहा था मैं। है, कई बार हम संवाद में कह देते हैं, एक व्यक्ति सामने आ गया और हम कहेंगे अरे अच्छा हुआ आप या आ गए, अभी अभी मैंने आपको इतना याद किया जो बात मत पूछो। तो उसी वक्त क्या रिएक्शन होता है जब हम उसको कहते मैंने आज अभी अभी आपको बड़ा याद किया, आप की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गए। तो वो सबसे पहला रिएक्शन ये होगा, वो पूछेगा क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था, क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था। तो अक्सर करके देखा जाता है जब हम किसी को याद करते हैं ना, ये स्वार्थ की याद होती है, कुछ काम है, कुछ मतलब है उसमें, तभी उसको याद करते हैं। नहीं तो इतने लोगों के बीच में उसी को याद क्यों कर रहे हैं, कुछ मतलब होगा जरूर। तो मैं कहूंगी हाँ इसीलिए मैं याद कर रही थी क्योंकि ये काम था, ये काम था, सोचा आपको मैं बताऊं या आपसे पूछूं या आपसे कुछ लूं, मतलब कुछ न कुछ स्वार्थ है। तो परमात्मा को भी अगर हम याद केवल करते हैं इसका मतलब कुछ स्वार्थ है। इसीलिए गायन है, कबीर का ही गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। पर उसके बाद का वाक्य है जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में सिमरन ना किया दुख में करता याद रे। तो जब दुख हुआ हे भगवान हा? और जब सुख है तो भूल गए। कई समझते हैं कि भगवान हमारा अंतिम साथी है, जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तब कहते हुए जाते हैं राम नाम सत है, सत बोलो गत है। अब वो राम नाम सत्य किसके साथ है, उस अर्थी के साथ है क्या, किसके साथ है, अर्थी का मतलब क्या होता है, अ प्लस रथी, जिसमें से रथी तो चला गया, अ हो गया, निकल गया। रथी के बिना तो अर्थी होगी ना, उसके साथ राम नाम सत नहीं है, उसकी मंजिल तो मिट्टी है, पंच तत्व में विसर्जित होना है। तो राम नाम सत है, सत बोलो गत है, किसकी गति है और कौन है सत्य, ये प्रकृति, ये पंच तत्वों का शरीर तो असत्य है, परिवर्तनशील है। आध्यात्मिकता में जो चीज परिवर्तनशील है वो तो असत्य मानी गई है। जो चीज नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, अमर है, अजर है, वो सत्य है। इसलिए आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और इस संसार में जो कुछ परिवर्तन होता है इसीलिए इसको सत्य कहा है, क्योंकि सब कुछ क्षण क्षण बदलता ही रहता है। तो वो सत्य परमात्मा से किसका संग है, आत्मा का संग है, और आत्मा तो है ही उसकी। जो चीज जिसकी है उसको वापस मिल जाता है, पंच तत्व से ये शरीर बना तो पंच तत्वों को वापस लौटाना है, जिसकी चीज है भाई वापस लो। पंच तत्वों से ये शरीर बना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो इसीलिए राम नाम सत्य इस ईश्वर के लिए हम जब कहते हैं तो आत्मा के साथ उसका संबंध है, केवल अंतिम यात्रा में नहीं है। इसलिए वो अंतिम साथी नहीं है, वो सच्चा साथी है। इसीलिए गायन भी होता है, जिसका साथी हाँ जिसको राखे साइया मार सके न कोई, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इसीलिए परमात्मा ही मेरा सच्चा साथी है, एक ऐसा निश्चय हो जो हम उसको कभी भूल ही न सके। ये नहीं हो कि दुख हो तब ईश्वर को याद करें, सुख में याद ही न करें, परंतु हर वक्त उसकी याद हो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। जिस प्रकार एक रिचार्जेबल बैटरी को यूज भी कर रहे हैं पर साथ साथ पावर हाउस से भी उसका कनेक्शन रखा हो है, संबंध जोड़ा हुआ है, वायर कनेक्टेड है, तो वो बैटरी कभी डिस्चार्ज होगी नहीं, क्योंकि चार्ज उसको मिलती रहती है। परंतु यूज किया फिर डिस्चार्ज होने पर है, फिर उसको चार्ज करो, फिर यूज करो, फिर चार्ज करो, पर सदा ही कनेक्टेड है तो डिस्चार्ज होगी क्यों। तो अगर सुख के सागर परमात्मा से सतत संबंध है तो दुख कभी आएगा ही नहीं। जैसे एक वातानुकूल हॉल में या कमरे में या गाड़ी में या दुकान में बैठे हैं तो बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो, वो एयर कंडीशन स्थान में बैठे तो वो गर्मी का असर होगा ही नहीं। हमने वातावरण को अनुकूल कर दिया है, अपने टेम्परेचर पर सेट कर दिया है जिसमें हम ठंडक भी महसूस कर सके। तो मन को भी हम अनुकूल बनाएं चिंतन के माध्यम से। इसलिए कोई मंत्र केवल नहीं देंगे हम कि आप इसका जाप कीजिए, परंतु आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हो। जैसे आपको बताया ओम नमो शिवाय का जाप दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूं, ये है ओम नमो शिवाय का अर्थ। अब शिव को नमस्कार करने वाला मैं कौन, अगर देह का अभिमान होगा तो ये मंत्र सार्थक थोड़ी होगा। फिर जिस शिव को मैं नमस्कार कर रहा हूं वो कौन है, उसकी भी पहचान चाहिए, क्या संबंध है मेरा शिव से, वो कहाँ है, मैं कैसे मिल सकता हूँ, क्या प्राप्ति होनी है। अगर इन बातों की जानकारी नहीं है, पहचान नहीं है, तो भी प्राप्ति नहीं होगी। तो मुख अपना काम करेगा, उंगलियां अपना काम करेगी, आंखें अपना काम करेगी, देखेगी भी चलो, लेकिन मन तो बेलगाम घोड़ा होके भटकता रहेगा, क्योंकि मन को तो काम दिया ही नहीं, केवल उंगलियों को, मुख को और आंखों को काम दिया, जो स्थूल चीज है। परमात्मा में मन तब लगे, क्योंकि मन सूक्ष्म है तो उसको सूक्ष्म तरीके से ही लगाना होगा। इसीलिए आपको सवेरे बताया कि उसका परिचय हो, फिर उनसे संबंध हो, उनसे सच्चा प्यार हो, फिर उनसे ही प्राप्ति हो, वही साथी हम समझें, तब देखो मन कैसे लगता है उसमें। तो केवल करने वाली याद न हो, वो तो स्वार्थ की याद होगी, जब कोई चीज चाहिए है भगवान ना, बाकी तो भूले हुए हैं उनको, और बाकी के लिए समझते ये सब तो मेरा है। अगर उनका ही मैं समझ कर चलूं तो उनकी याद सदा बनी रहेगी। कोई चीज मेरे पास किसकी अमानत है तो उस अमानत देने वाले व्यक्ति की याद तो रहेगी ना, भाई ये मेरी नहीं है, ये फलाने की चीज है, अमानत है। तो जैसे ये एक भारत की संस्कृति में है, ये भगवान का है, ये भगवान का है, ये क्यों ये भावना बिठाई जाती है, ताकि उसका यूज करते हुए इस्तेमाल करते हुए भी ये उनकी याद बनी रहे, क्योंकि ये उनका है। तो आज क्या हो गया है कि 1300 मेरा मेरे हाथ न लगा, ये आज बातें हो गई, स्वार्थ आ गया है, अमानत को अमानत में क्या कर लिया, ख्यानत डाल दी है। है अमानत भगवान का है सर, जब चीज गई, हे भगवान तुमने मेरी ये चीज क्यों उठा ली, क्यों ले ली, भगवान कहेगा किसकी थी, किसकी थी, हे भगवान मेरी चीज क्यों उठा ली, मेरी कहां से आई, ये तो उसकी थी ना, जब उसी का ही दिया हुआ है तो उसी की है ना, मेरी आई कहां से वो चीज, ये कोई भी। इसीलिए हम स्वार्थवश ही उसको याद करते हैं। अब हर वक्त ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा भी उनकी, ये सब कुछ उनका, ये ऐसा चिंतन हमारा बना रहे तो मन और बुद्धि इतना सहज उपराम हो जाएगा। तो केवल करना नहीं है, अच्छा केवल आना, कई बार दूसरी याद होती आती है, हम कहेंगे फलाने की याद बड़ी आ रही है मुझे आज, आज फलाने की याद आ रही है। याद किसकी आती है, वो स्वाभाविक होती है, अधिकतर जिससे प्यार होता है ना उसकी याद अपने आप आती है, हम मेहनत नहीं करते, करते नहीं है, याद अपने आप आती है, प्यार है। इसीलिए अब सबसे प्यारा तो परमात्मा है, उसकी याद अपने आप आए, उसके लिए कोई हम हट क्रिया क्यों करें, कष्ट क्यों करें, बस प्रेम विभोर हो जाए। जैसे मीरा थी वो तो साकारी याद में थी, अब यहाँ निराकारी याद है। कई कहते हैं बहन जी साकारी याद तो बड़ा सहज है, मीरा कृष्ण को याद करती थी या उसकी याद आती थी क्योंकि उसकी आंखों में समाया हुआ था श्री कृष्ण, जहां देखती हूँ वहां तू ही तू, तू ही तू, यही गुण गाती थी। जिसकी आंखों में कोई समाया होता है, कोई चीज है, तो वही चीज दिखाई देती है ना, आंखों में अगर कुछ है, हरा चश्मा है तो सब कुछ हरा ही दिखेगा। इसलिए बहुत सुंदर गीत, मीरा के भजन बहुत सुंदर हैं, क्योंकि उनकी आंखों में समाया हुआ था श्री कृष्ण। अब परमात्मा हमारी आंखों में समाया हो तो कई कहते साकारी याद तो बड़ी सहज है, ये निराकारी याद कैसे हो, ज्योति स्वरूप की याद कैसे हो, ये भी सहज हो सकती है, क्योंकि मैं भी तो एक आत्मा हूं ना, तो पहले अपने आप को भी तो अनुभव करो मैं कौन हूं। कई कहते कि अच्छा उस तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए ना, बिना माध्यम के कैसे हम उस तक पहुंचेंगे, हम कहते हाँ माध्यम तब तक चाहिए जब तक संबंध जुड़ा नहीं है। जैसे कुमार कुमारी की सगाई जब तक हुई नहीं है, शादी हुई नहीं है, सात फेरे लगे नहीं है, तब तक ब्राह्मण चाहिए, बीच में दलाल चाहिए जो सात फेरे लगवाए, वायदे करवाए, है ना, बहुत कुछ कराता, परंतु तो ये सब हो जाने के बाद फिर माध्यम की जरूरत है क्या। कहते ना मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी की जरूरत तब पड़ती है, जे कोर्ट में कब जाना होता है, जब मियां बीबी राजी नहीं है, भाई डाइवोर्स देना है, नहीं जी सकते साथ में। अगर खुश है आपस में तो कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, जाने की जरूरत है क्या। यानी माध्यम की आवश्यकता तब है जब मियां बीबी बने नहीं है अभी तक, तब तक चाहिए। अब आत्मा का परमात्मा से तो अनादि अविनाशी संबंध है, कोई नया संबंध तो थोड़ी हमारा, और वो स्वयं ही दलाल बन करके हमारे साथ संबंध जोड़ने की विधि बताता है। भले माध्यम लिया पिताश्री ब्रह्मा बाबा का, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मुझे याद करो, कई कहते फिर आप उनका फोटो क्यों रखते हो, हम कहते हमारे अलौकिक पिता है तो क्यों नहीं फोटो रखेंगे। आपके पिता का फोटो आप बना के रखते हैं तो लोग एतराज उठाएंगे, आपने ये क्यों रखा है, अरे मेरा पिता है क्यों नहीं रखेंगे। तो पारलौकिक पिता भी उनको भी हम जानते हैं, पर वो हमारे अलौकिक पिता है, पर याद उनको नहीं करते, याद तो इनको करते हैं। उन्होंने भी कहा उनको याद करो। इसलिए माध्यम के द्वारा पहचान दी है। अब कहते हैं परमात्मा से सब संबंध जोड़ो, तो केवल आने वाली याद भी नहीं है, क्योंकि सब संबंध है मेरे उनके साथ। और जहां संबंध होता है तो वो याद कभी कभी दुख भी देती है, क्योंकि वो सताने वाली याद बन जाती है। किसी से बहुत प्रेम हो, मान लो बहुत घनिष्ठ संबंध है, अब वो संसार से चला गया तो कितनी याद उसकी सताती रहती है, चला गया, हरेक को जाना एक दिन, जो आया है इस दुनिया में सदा तो नहीं रहेगा, सबकी टिकट कटनी है ना, सब यहाँ रिटर्न टिकट लेकर आए हैं ना, सभी वापस जाना है ना परसों, वैसे भी जाना है, यहाँ थोड़ी बैठ जाना है। अगर आप कहेंगे भी बहन जी दो दिन, और हम कहेंगे नहीं भाई साहब, बहन जी जाना, आपको जाना होगा क्योंकि आपके बाद दूसरा प्रोग्राम होगा यहाँ, तो कैसे रखेंगे। इसीलिए इस संसार में भी हम आए हैं तो जाना जरूर है वापस, हम यहाँ रह तो नहीं सकते हैं। तो देहधारियों की याद सताती रहती है जब वो जाते हैं, अब परमात्मा की याद सताती नहीं है क्योंकि वो तो अजर अमर अविनाशी है। और अब परमात्मा कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए, इसीलिए आया हूं गाइड बन करके, और बिना ले जाए मैं जाऊंगा नहीं, तुमको साथ ही ले जाऊंगा। तो ये राजयोग वास्तव में चौथे प्रकार की याद है, जिसको हम कहते हैं समाने वाली याद। परमात्मा से इतना प्यार हो, इतनी घनिष्ठता हो, जो आत्मा उसमें खो जाए। इसीलिए शास्त्रों में लिख दिया आत्मा परमात्मा में विलीन हो गए। ये विलीनता की अवस्था, समाधि की अवस्था, इसका भाव क्या है? आत्मा परमात्मा में विलीन स्थूल रूप में थोड़ी हो सकती है, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी परमात्मा भी अविनाशी, स्थूल रूप में विलीन की बात नहीं है, स्थूल रूप में निकलने की बात नहीं है। कई समझते आत्मा तो एक बुदबुदा है, वो सागर से निकली फिर सागर में मिल जाएगी, ये उदाहरण स्थूल उदाहरण चीजों के लिए ठीक है, लेकिन आत्मा या परमात्मा ये स्थूल रूप में तो नहीं है जो निकले और फिर मिल गए, या ज्योति निकली और मिल गई। आत्मा रूपी ज्योति भी अनादि अविनाशी है, तो परमात्मा की ज्योति भी अनादि अविनाशी है, कोई प्रकट नहीं हुई कहीं से, सदा ही है, यानी कि पहले नहीं थी फिर पैदा हुई। हम सब अनादि अविनाशी आत्माएं हैं, और हमारा धाम परम धाम है, परमात्मा का भी वही धाम है। इसलिए राजयोग के लिए जो हम विधि बताते हैं वो एक यात्रा के रूप में है, केवल मंत्र जाप की बात नहीं है। अगर मंत्र शब्द भी हम देखें तो उसका भी अर्थ है। मंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दादी हृदय मोहिनी ने आपको कहा कि ये महामंत्र आपको मिला ओम शांति का, पर ये भी जाप करने लिए नहीं है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति केवल ऐसा ही थोड़ी जाप है। एक व्यक्ति यहाँ से प्रतिज्ञा करके गया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, दादी ने भी आज आपको बताया ना प्रतिज्ञा करो, तो प्रतिज्ञा करके गया। अब घर गया तो पत्नी ने कुछ कहा ओम शांति, कुछ बोला नहीं, फिर माँ ने कुछ कहा ओम शांति, थोड़ा टोन बदलता गया ओम शांति में, फिर पड़ोसी ने कुछ कहा ओम शांति, फिर दूसरे ने कुछ कहा ओम शांति, अब ओम शांति भी गुस्से से बोलना चालू कर दिया। अब ओम शांति गुस्से से बोलना होता है क्या? ओम शांति ओम शांति का मतलब क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो शांत हो जाना होता है ना उस समय, केवल बोलने के लिए थोड़ी है। कई बार मुख पर मंत्र होता है, हाथ में कुछ नहीं, एक वो हम अब माउंट आबू में देखा होगा, जब म्यूजियम गए होंगे कल, तो वहां एक मॉडल है म्यूजियम में, जिसमें एक भक्त दिखाया है, राधे कृष्ण की मूर्ति सामने है और वो उनकी भक्ति कर रहा है, हाथ में घंटी है। अब वो प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है, परंतु आंखों में गुस्सा भरा हुआ है, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, तो हाथ में घंटी है और जो पूजा मतलब प्रार्थना कर रहा है पर गुस्से वाली आंखें हैं, तो जो घंटी है ना, वो घंटी से ही बच्चों को मार रहा है। और मुख पर तो प्रार्थना है, अब बताओ, मुख पर प्रार्थना और घंटी बच्चों को मार रहा है, आंखों में गुस्सा है। तो ऐसे थोड़ी भक्ति होती है। भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम। इसलिए राजयोग भक्ति योग भी है। वो सच्चा प्रेम कैसे बढ़ेगा? ईश्वर से प्रेम, परमात्मा के गुणों का गायन करते 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 उसमें खो जाओ, यही वास्तव में सच्चा प्रेम है। पर आज वो प्रेम क्यों नहीं अनुभव होता? क्योंकि प्रार्थना करते हैं या कीर्तन गाते, कीर्तन करते 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 कुछ मांग लेते हैं। कीर्तन माना कीर्ति, ईश्वर की स्तुति गाना। तो स्तुति गाते 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 अगर कुछ मांग लिया, ये तो स्वार्थ हो जाएगा। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि स्तुति गाते गाते, परमात्मा की महिमा करते 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 इतना प्रेम विभोर हो जाओ, जो उस प्रेम के कारण परमात्मा के गुणों में खो जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाऊं, प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर में खो जाऊं, केवल एक बूंद की प्यासी ना बनूं, सारे सागर को ही पी जाऊं, तो भी वो सागर फूटने वाला नहीं है, इतना वो प्रेम का सागर है। तो इसलिए इस राजयोग में हम कुछ अवस्थाएं बताते हैं, एक यात्रा के समान है ये राजयोग। तो मंत्र केवल जाप के लिए नहीं देंगे, मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? मंत्रणा। मंत्रणा शब्द से निकला है मंत्र, और जो वो मंत्र देता है वो बनता है मंत्री। पहले जमाने में राजाओं के मंत्री कौन होते थे? उनके सलाहकार, राजाओं के सलाहकार। आजकल तो मिनिस्टर को मंत्री कहते हैं, पर सलाहकार राजाओं के वो मंत्री होते थे, जो राजा को सलाह देते थे, एडवाइजर टू द किंग। कोई भी बात हमको समझ में नहीं आएगी, मैं कहूंगी भाई इसके लिए कुछ मंत्र दो ना। वो जैसे मिसाल देते हैं ना कि एक राजा था, उस राजा ने ऐलान किया कि मेरे राज्य में मेरे पास बहुत जमीन है, लेकिन मैं एक शूरवीर को ये जमीन देना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त रखी कि एक बड़ा पत्थर लिया और कहा कि जो व्यक्ति इस पत्थर को एक हथौड़े से दो टुकड़े कर लेगा, मैं उसको मेरा हाँ इतनी जमीन में दे दूंगा। अब बहुत आए बड़े मसल मैन, बड़े अपनी शक्ति दिखाने वाले, लेकिन कोई भी उस पत्थर को एक हथौड़े से दो टुकड़े नहीं कर सका। बड़ा मजबूत पत्थर था। लेकिन इसके बाद एक दुबला पतला सा व्यक्ति आया, उसने कहा मैं तोड़ूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा ने पूछा क्या शर्त है? तो कहा मेरी शर्त है कि मेरे कान में कोई कुछ कहेगा। आपकी शर्त मैं कबूल करता हूं, मैं एक हथौड़े से तोड़ूंगा, लेकिन मेरे कान में कोई कुछ कहेगा, आपको कबूल हो तो मैं करूंगा। राजा ने कहा मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी शर्त इतनी है कि एक हथौड़े से तोड़ो। तो जब वो व्यक्ति ने हथौड़ा उठाया तो दूसरे व्यक्ति ने उसके कान में कुछ कहा, कुछ कहा, कुछ कहा, कहता गया, कहता गया, कहता गया, और इतनी शक्ति आ गई उसको। कहां से आ गई वो शक्ति जो सचमुच एक हथौड़े इसमें उसने तोड़ दिया एक धक से? तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कितना दुबला पतला आदमी, शक्ति कहां से आ गई? ये मंत्र जो दिया होगा ना कान में, उससे शक्ति मिली होगी। तो राजा ने पूछा जरा मुझे ये तो बताओ कि क्या उसने कहा आपको? उसने कहा मुझे इतना ही कहा कि देखो पहचानो अपने आप को, तुम कौन हो, तुम राजपूत हो। राजपूतों की कहानियां कितनी प्रसिद्ध है। तो तुम राजपूत हो, तुम कभी हार नहीं सकते हो, धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए, बोलता गया। तुम्हारे पिता ने कभी कभी हारा नहीं, वो विजयी था, तुम्हारे दादा विजयी थे, तुम्हारे परदादा विजयी थे। राजपूतों की कहानियां आती ना कि कैसे राजपूतों की महिलाएं अपने पति को विजय का तिलक लगा करके भेजती थी रण में लड़ने के लिए, और कहती थी कि हार खा के वापस नहीं आना, भले मर जाओ मिट जाओ पर हार खा के वापस नहीं आना। यानी इतनी शूर वीरता थी उनके जीवन में, उनके विचारों में। इसलिए तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, यानी वो बोलता गया तो क्या हुआ होगा, कितनी शक्ति आ गई उसको। तो मंत्र कौन सा दिया, कोई एक शब्द खाली रटा क्या, वो शक्ति देने वाले विचार उसको दिए। तो आत्मा को भी शक्ति देने वाले विचार चाहिए, तब ये शक्ति आत्मा में आएगी जो भीतर ही है, पर जैसे सोई हुई शक्ति है। जिस प्रकार हनुमान के लिए बताते कि उसके पास बहुत शक्ति थी, लेकिन जब तक उसको कोई याद नहीं दिलाता था तब तक उसको वो शक्ति का आभास नहीं होता था, पर जब उसको याद दिला, अरे हनुमान तुम तो उड़ सकते हो, तुम तो लघु हो सकते हो, तुम तो इतने विशाल बन सकते हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो एकदम से उसको स्मृति आ गई। तो जैसे एक जायंट होता है ना, हाँ इतना शक्तिशाली, पर वो सोया हुआ है तो उसकी शक्ति भी सोई हुई है। इसलिए देखो विवेकानंद ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किसका सही अर्थ क्या है, सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या हमें मुक्ति दिलाती वो शिक्षा। और उसके लिए विवेकानंद ने क्या कहा कि एजुकेशन इज ड्रॉइंग आउट द परफेक्शन फ्रॉम विद इन। आपके अंदर जो परफेक्शन है, जो संपूर्णता है, उसको प्रकट करना, मैनिफेस्ट करना, उसको व्यक्त करना, ये वास्तव में शिक्षा है। जो हम सुनते हैं बाहर से ये तो सूचना है, पर जो भीतर से निकलता है वो शिक्षा है, वो एजुकेशन है, वो वास्तव में आत्मा की शक्ति है। अब वो शक्ति कैसे अनुभव हो, चिंतन से अनुभव होगी। इसीलिए राजयोग में हम केवल आपको कोई शब्द देंगे और कहेंगे इस पर इसी को रटो या इसका केवल उच्चारण करो, इतनी बार कहो, जाप करो, ऐसी बात नहीं है। तो राजयोग में पहली अवस्था, इसमें चार अवस्थाएं हैं, इन चार अवस्थाओं से हम गुजरते हैं, और मंजिल क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। घर भी जाना है, जिस घर से हम आत्माएं आई थी उसी घर वापस जाना है, और फिर एक नई दुनिया में, उस सतयुगी दुनिया में भी आना है मानव से देव बन करके। तो इसीलिए ये हमारे सामने लक्ष्य है। जिस संपूर्ण स्थिति में आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आई थी उसी संपूर्ण स्थिति में वापस लौटना है। ये एक विकार आत्मा की चीज नहीं है, आत्मा तो अपने मूल स्वभाव में अति शुद्ध है। इसलिए वो शुद्धि आत्मा को अनुभव करनी होगी परमात्मा के सानिध्य में, इसलिए उसका चिंतन चाहिए। तो राजयोग में कई अवस्थाएं हैं जिनसे गुजरना होता है। जैसे आप माउंट आबू या आबू आए बाय रोड आए तो आपके आगे कई माइलस्टोन्स, किलोमीटर स्टोन्स आए होंगे कि भाई अभी आबू इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है, अभी बस 20 किलोमीटर दूर है, अभी 10 किलोमीटर दूर है, तो वो लिखत आती है, पता चलता है कि बस अभी पहुंचे कि पहुंचे। इसी प्रकार इस राजयोग के अंदर भी कुछ अवस्थाएं हैं, और वो अवस्थाओं से जैसे गुजरते हैं हमें अनुभव होता है कि हम उस संपूर्णता के निकट पहुंच रहे हैं, जिसमें पहली अवस्था है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन। मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति हूं, मैं प्रकाश का पुंज हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं, ये मन को चिंतन देना है बुद्धि के बल से। जिसमें तीन कदम हम बताते हैं। पहला कदम है इस शरीर में मैं आत्मा कहाँ हूं, जैसे मैं बैठा बैठी या जो भी, अब मैं अपने आप को आत्मा निश्चय करूं, एक ज्योति हूं, कहाँ है मेरा वास, यहाँ। तो जैसे मैं अपना ध्यान यहाँ करती हूँ, आंखें बल खुली हो लेकिन हम जानते हैं कि मैं आत्मा यहाँ वास कर रही हूँ, एक ज्योति हूँ यहाँ। जैसे कुटिया में एक दीपक जल रहा है तो शरीर की कुटिया में मैं ज्योति हूँ, या शरीर रूपी रथ में मैं रथी हूँ, ड्राइवर हूँ, शरीर रूपी डिब्बी में मैं एक हीरा हूँ। इस प्रकार का चिंतन, अपने आप को देह से अलग निश्चय करने का चिंतन, ये ऐसा सुंदर चिंतन हम करते हैं ताकि सहज ही हम हल्के हो जाते हैं, बहुत हल्के। ज्योति तो ऊपर की ओर जाएगी, शरीर भारी है वो नीचे की ओर आएगा, आत्मा तो इतनी हल्की है। तो जैसे मैंने ये चिंतन किया, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, हल्कापन महसूस होने लगेगा। फिर आत्मा कैसी हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। कई कहते हैं मैं कैसे कहूँ मैं शुद्ध रूप हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए हैं बहन जी जीवन में, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, कैसे कहूँ, ये तो अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। हम कहते नहीं, शुद्ध होने का तरीका ही ये है। शुद्ध कैसे होंगे, मैं शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, ये कहने से शुद्ध होंगे क्या? जैसे ये सफेद वस्त्र हमने पहने हैं, बड़े साफ हैं, जरा सा दाग होगा तो दिखाई देगा। अब उस ये दाग है, दाग है, दाग है, कहने से दाग मिटेगा क्या? कैसे मिटेगा, है? धोने से मिटेगा ना। तो कैसे धोंगी भाई, साबुन लगा करके, पानी डाल करके तो ये दाग मिटेगा? तो मैंने तो बहुत पाप किए, मैंने बहुत पाप किए, ऐसे कहने से पाप मिटेंगे क्या? परमात्मा कहते हैं तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। भगवान का वायदा है कि मैं तुझे तेरे सर्व पापों से मुक्त करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त है? तू मुझे याद कर। तो याद से वो पाप मिटेंगे ना, कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, कहने से पाप मिटेंगे क्या? तो जैसे वो साबुन लगाते हैं तो शिव बाबा हमको कहते हैं, हाँ पहले जमाने में लक्ष साबुन होता था ना, आज भी है, तो लक्ष सामने रखो, लक्ष से ये लक्ष साबुन आया होगा। खैर लक्ष से तो कपड़े नहीं धोते पर बदन तो धोते हैं। तो लक्ष माना मुझे उसी मुक्ति धाम जाना है, शुद्ध मैं आत्मा उस परम धाम में कितनी शुद्ध हूँ। याद करो अपने शुद्ध स्वरूप को, याद करो सत्युगी दुनिया में मैं आत्मा कितनी शुद्ध हूँ, ये निश्चय चाहिए। वो शुद्धि का संकल्प करते ही शुद्धि का अनुभव होने लगेगा। इसीलिए हम जब हम चिंतन करते तो पहला चिंतन क्या है? आत्मा का चिंतन। मैं आत्मा कैसी हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे जैसे ये चिंतन करते जाएंगे हम और हल्के होते जाएंगे, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। तो जैसी शुद्ध चीज हल्की होती है, सोना शुद्ध होता है तो कितना हल्का होता है, उसमें तांबा लोहा ये सब डाला तो भारी हो जाता है। तो मैं आत्मा भी अति शुद्ध हूँ तो हल्की हो जाऊंगी, और हल्की होकर के फिर एक सेकंड में मन से उड़ सकते हैं बुद्धि के द्वारा, और महसूस करूं मैं शांति धाम में, शांति के सागर परमात्मा के सामने हूं। तो मन की आंख उस परमात्मा को देखे जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु है, और फिर उस सिंधु से मैं शक्ति ले रही हूं। तो पहली अवस्था में आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन है। इस चिंतन में हो सकता है अशुद्ध चिंतन, व्यर्थ चिंतन मिक्स हो जाए, हो सकता है, क्योंकि अभ्यास की कमी है। पर जैसे अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं तो ये अशुद्ध चिंतन होगा ही नहीं, शुद्ध चिंतन ही होगा। जैसे पहली बार कोई ड्राइविंग सीखता है तो फर्स्ट गियर में ही रख करके गाड़ी चलानी होती है, जो भारी गियर है, क्योंकि बार बार ब्रेक देनी होती है। परंतु जो होशियार ड्राइवर होता है वो पहले से ही भांप लेता है कि कैसे मुझे ऐसे मोड़ करके ले जाना है, वहां रुकेगा नहीं जहां भी कोई विघ्न आएगा। वो जानता है पहले से, या तो स्पीड कम कर देगा और फिर मूव करके चला जाएगा, इसलिए वो टॉप गियर पर भी कर सकता है। पर जो पहली बार चलाएगा उसको तो धीरे धीरे फिर ब्रेक लगाना हो, फिर धीरे धीरे करना पड़ता है। तो अभ्यास जब तक नहीं है तो व्यर्थ चिंतन, अशुद्ध चिंतन आते रहेंगे। कुछ शुद्ध चिंतन अभी अभी आएगा, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, और अभी अभी आएगा उसको मैं मार डालू, ऐसा भी चिंतन आएगा, गुस्सा का, ईर्ष्या का, नफरत का, इतना अपोजिट। परंतु इस अवस्था में संघर्ष जरूर चलता है, पर घबराओ मत। जैसे होम्योपैथी दवाई कोई होती है ना, दवाई ठीक लग गई तो चाहे कितनी भी क्रॉनिक बीमारी क्यों ना हो, बहुत पुरानी बीमारी होती है क्रॉनिक, वो भी निकल सकती है होम्योपैथी की अगर ठीक दवाई मिल जाए तो। और डॉक्टर कहेगा ये बहुत पुरानी बीमारी है, ये जड़ से निकलनी है, लेकिन आपको लगेगा कि थोड़ी बढ़ गई, पर चिंता नहीं करना। कई बार ऐसे होता, हम योग करने बैठे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और इतने बुरे बुरे विचार आते हैं जो कभी नहीं आए वो भी आने लगते हैं, तो कई सोचते भाई ये तो हमारे से नहीं होगा, ये तो कभी नहीं सोचा वो भी आ रहा है, ये तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन ये जड़ से खत्म कर रहा है। तो वो होम्योपैथी दवाई देंगे, आपको समझाएंगे कि भाई ये जड़ से खत्म होगी, इसलिए घबराना नहीं। तो ये भी राजयोग के द्वारा जो अंदर घर कर चुकी है ये अशुद्धता, वो निकल जाएगी शुद्ध चिंतन करने से। जैसे पानी की बाल्टी हो, वो गंदा पानी है, अब आप उसके ऊपर शुद्ध पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, क्या होगा धीरे धीरे, हाँ क्या होगा, वो अशुद्ध जो गंदा पानी है वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा, थोड़े समय के बाद साफ पानी ही भरा होगा बाल्टी में। तो वो अशुद्ध जो भी विचार है वो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएंगे। अगर ये सोचेंगे क्यों आया क्यों आया, तो बैठ जाएगा। कोई व्यक्ति आया है बिना बुलाए, हाँ मेहमान अगर बिना बुलाए आ गए तो आप उसकी मेहमान निवाजी करेंगे तो बैठ जाएगा, अगर आप ध्यान ही नहीं देंगे तो चला जाएगा, होगा ना। तो ये भी अशुद्ध विचारों की मेहमान निवाजी मत करो, ये क्यों आया ये क्यों आया, इसको नहीं आना चाहिए, विचार क्यों आते हैं, वो आए ठीक है, पर मैं अपने विचारों में, श्रेष्ठ विचारों में मस्त रहूं तो वो अपने आप चला जाएगा। या तो नॉट, नहीं, ये अपने अंदर दृढ़ संकल्प करो तो भी भाग जाएगा, ब्रेक लगा दिया वो विघ्न आपको कोई परेशान नहीं करेगा। या तो डॉट, एक बिंदु, बस जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, तो भी व्यर्थ नहीं आएगा। और आप अपने श्रेष्ठ विचारों में रमण करते रहो। तो इसीलिए पहली अवस्था में विचारों का मनन चिंतन, जिसमें अशुद्ध भी आएगा शुद्ध भी आएगा, कई प्रकार के आएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे अभ्यास करते जाते हैं तो हम जैसे योग में बैठेंगे, मैं आत्मा हूँ, देश से न्यारी हूँ, शिव पिता की संतान हूँ, ये सोचते ही अंदर ही अंदर भगवान से बातें करना शुरू कर देते हैं, शिव बाबा से बातें होने लगती हैं, जिसमें कुछ भी चीज मांगते नहीं है हम भगवान से, लेकिन अंदर ही अंदर इतना प्यार शिव बाबा से होता है, क्योंकि उनका रूप कितना सुहाना है, प्यारा बच्चा होता है कितना प्यारा लगता है, स्वीट है, क्योंकि बड़ा इनोसेंट है। तो सबसे सुंदर सबसे प्यारा एक परमात्मा ही है, तो इसीलिए परमात्मा के प्यार में खोने के लिए उनके गुणों का वर्णन करते जाना है, न कि कुछ मांगना है। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं राजयोग में कुछ मांगो मत, उसकी बजाय धन्यवाद करो, गुण भी मांगो मत, अधिकार रखो कि मैं भी उसी गुण का स्वरूप हूं। तो ये मत कहो शिव बाबा मुझे शांति दो, नहीं, शिव बाबा आप शांति के सागर हो तो मैं आत्मा आपकी संतान कौन हूं, कौन हूं, शांत स्वरूप हूं, हूं मैं, अधिकार है मेरा। तो जैसे ही मैंने कहा मैं शांत स्वरूप हूँ, शिव बाबा आप शांति के सागर हो, तो कितना प्यार उभरेगा शिव बाबा के प्रति। तो दूसरी अवस्था में इस प्रकार से अंदर ही अंदर शिव बाबा से बातें करो, गुणों का अधिकार रखो और केवल अपनी कमियां कमजोरियां ही वर्णन मत करो। जो अंदर में कोई कमी है शिव बाबा को बता करके प्रतिज्ञा करो कि ये फिर मैं कमी आने नहीं दूंगा, तो शक्ति मिलेगी, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी। और अंदर में किसी के प्रति यानी वैर, दुश्मनी, दुर्विचार कभी मत रखो। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जो करेगा वो भरेगा। मैं क्यों सोच करके अपने मन को मैला करूं? इसीलिए हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, बड़ा दिल तो रखेंगे तो सबकी दुआएं प्राप्त होगी। ये दुआएं हमको एक आत्म शक्ति का अनुभव कराएंगे। दुआएं सबसे लो, बद्दुआ किसी से मत लो। ये जब दुआएं मिले, ये मानो हमारे लिए एक ओपन चेक के रूप में होगा। बहुत बड़ी संपत्ति है ये, हम जितना उसमें डाले उतना डाल सकते हैं। खुला चेक है, अभी लिखत है ही नहीं, तो हम तो मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। दुआओं की कमाई इतनी होती है। इसलिए ईश्वर से के प्रति न वो स्वार्थ भाव हो, न कोई उस अंदर से कुछ मांगने की इच्छा हो, बस उसमें खो जाओ। तो अंदर ही अंदर इस प्रकार की बातें करते 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 तीसरी अवस्था में आते हैं, जिसमें आत्मा उस गुण स्वरूप की स्थिति में आके उस गुण के सागर में समा जाती है। जैसे शांत स्वरूप शांति के सागर में समा गई, और समाते 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 वो सागर ही स्वरूप में समा गया। जैसे सूरज की किरणें कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करते हैं, मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, शीशा लेते हैं जिसमें सूरज की किरणों को केंद्रित करते हैं, तो केंद्रित जैसे करते हैं तो केंद्र पर एक कागज मानो रखते हैं, तो क्या होता है, वो केंद्रित की हुई किरणें कागज पर एक बिंदु बनाती है। वो बिंदु इतने बड़े सिंधु सूरज का प्रतिबिंब होता है, इतना छोटा प्रतिबिंब होता है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति होती है, पूरे सूरज की शक्ति है, और एक सेकंड में कागज जहां रखा वो जलने शुरू हो जाता है, आग निकलने लगती है। वैसे किरणें आग नहीं लगाएगी कागज को, लेकिन केंद्रित की न किरणें तो कागज जलने लगता है। अब ये भी विचारों को केंद्रित करते हैं एक बिंदु में, जिस बिंदु में सिंधु की शक्ति है, और उस सिंधु में मैं आत्मा समाकर वो सिंधु को बिंदु में समा रही हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समाते समाते उस सागर को स्वयं में समा दिया। इसको कई समझते आत्मा परमात्मा बन गई। आत्मा कोई परमात्मा नहीं बनती है, परमात्मा कोई स्टेटस या डिग्री नहीं है, कोई पद नहीं है जो हम जाकर के बनेंगे। अभी राष्ट्रपति के लिए कितना हंगामा हो रहा है, कौन बनेगा कौन बनेगा, 5 साल पूरे हो रहे हैं तो गद्दी खाली करनी है, दूसरा राष्ट्रपति आना है, कितने झमेला हो रहा है। अब परमात्मा के प्रति ये झमेला होगा क्या, कौन बनेगा इसमें परमात्मा, वो कौन बनेगा करोड़पति, वो भी होता है, कोई आज तक पता नहीं कोई बना है, आज तक पहुंचे हैं करोड़ तक, कोई नहीं पहुंचा होगा। लेकिन इसी प्रकार कौन बनेगा परमात्मा, ऐसी थोड़ी कोई बात है। परमात्मा कोई डिग्री या पद या स्टेटस थोड़ी है, परमात्मा तो मेरे पिता है, परम पिता है। पिता आपका सदा ही पिता है, आप अपने बच्चों के पिता बन सकते हो, पर आपके पिता के आगे तो आप सदा ही बच्चे हो ना, क्या आप पिता बन गए पिता के आगे भी, हा? पिता के आगे पिता बन जाएंगे क्या? वो अकबर के लिए कहते हैं कि अकबर इतना बड़ा शहंशाह राजा था, लेकिन जब अपने पिता के पास आता था तो पिता कहता अकबरू इधर आओ अकबरू, उसको बड़ा गुस्सा आता था कि सब मुझे शहनशाह राजाधिराज पता नहीं क्या क्या महिमा गा करके मेरा सत्कार करते, और मेरा पिता तो मुझे अकबरू बुलाता है। तो पिता के प्रति उसको थोड़ा नाराजगी हुई, तो पिता ने भी ऐसे के नच्चे शुरू कर दिया, शाहो के शाह फलाना फलाना, क्या ये अच्छा नहीं लगा, बस तू मुझे अकबरू ही कहो, हाँ पिता के आगे माँ के आगे अकबरू ही ठीक हूँ। यानी कहने का भाव है कि पिता के आगे हम सदा ही बच्चे हैं, चाहे राजा हो जाए या कोई भी हो जाए, शिक्षक के आगे हम सदा ही विद्यार्थी हैं, चाहे कोई वाइस चांसलर बन जाए, पर उसका प्राइमरी शिक्षक, स्कूल का शिक्षक अगर उसको मिल जाए कहीं, वो बुजुर्ग होगा और विद्यार्थी तो वाइस चांसलर बन गया, जिसको सब सर 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 कहते होंगे, पर अपने प्राइमरी स्कूल टीचर के आगे वो विद्यार्थी है, वो अपने प्राइमरी स्कूल टीचर को सर कहेगा, चाहे सारे हजारों विद्यार्थी उसको सर कहते हैं। यानी कहने का बाबा, शिक्षक सदा ही शिक्षक रहता है, पिता सदा ही पिता रहता है, गुरु सदा ही गुरु है। जैसे विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, चाहे विवेकानंद ने दुनिया में नाम कमा लिया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता है दुनिया में, विवेकानंद को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कहने में आएगा किसका शिष्य है कि नहीं। तो गुरु सदा ही गुरु रहेगा, पर सतगुरु परमात्मा तो सदा ही सतगुरु रहेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी कहां से शक्ति लेता था, माँ से, माँ 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 कहता था जगत, हाँ माँ का भक्त था, काली का भक्त था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और माँ भी शक्ति भी कहां से शक्ति लेगी, शिव से लेगी। तो परम स्रोत कौन है, जिसको अन्य किसी से शक्ति लेने की जरूरत नहीं है, वो तो एक ही है। तो उससे संबंध हमारा है जो अभी टूट चुका था, अब कैसे जोड़ा, मैं आत्मा हूँ, परम धाम का वासी हूँ, और जो परमात्मा के गुण है वो मेरे भी गुण है, उसका चिंतन करते 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 उसमें खो जाऊं, और खोते 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 वो स्वरूप खुद में अनुभव करके संपन्न बन जाऊं। और वो संपन्नता की अवस्था अगर एक सेकंड के लिए भी आई ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उसी अवस्था में अनेक जन्मों के पाप भस्म होते हैं, और ये योग की अग्नि है, उस अग्नि में आत्मा का शुद्धिकरण होता है। फिर भले हम वापस, क्योंकि देह का बंधन खींचेगा, कोई आत्मा निकल नहीं जाएगी, घबराना नहीं, परंतु शुद्धिकरण की अनुभूति होती रहेगी, और धीरे धीरे महसूस होगा वो अशुद्ध विचार, व्यर्थ विचार, ये सब खत्म होते जाएंगे, दृष्टि वृत्ति स्मृति स्थिति स्कृति सब शुद्ध होते जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, ये जीवन इतना सुंदर बन जाएगा। जो सहज ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, मन को भी अपने वश में रख सकेंगे, सबके दिलों को भी जीत सकेंगे, तो क्यों नहीं नर नारायण बन सकेगा और नारी लक्ष्मी बन सकेगी। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करेंगे कुछ देर के लिए। तो ये चार अवस्थाएं हैं, देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं। पहली अवस्था है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, दूसरी अवस्था है परमात्मा से रूह रिहान, रूह की रूह से परम रूह से वार्तालाप, और तीसरी अवस्था है अव्यक्त अवस्था, जिसमें व्यक्त के सारे भाव खत्म, आत्मा अव्यक्त बनकर उस अव्यक्त पिता से सर्व नाते जोड़कर उसमें खो गई, वो माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन सब संबंध। और चौथी अवस्था बीज रूप की अवस्था, जैसे बीज में इतने बड़े वृक्ष का सार है, एक बिंदु में पूरे सिंधु के गुण हैं, तो मुझ आत्मा में परमात्मा के सारे गुण समाये हुए हैं, मैं आत्मा उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर रही हूँ। तो चलिए हम इसका अभ्यास करेंगे, और अंदर ही अंदर इतनी खुशी लाओ, इतनी खुशी, क्योंकि मैं आत्मा सच्ची कमाई करने बैठी हूँ, ये सच्ची कमाई है, गुणों की कमाई जो आत्मा के साथ जाएगी। और इतना नशा चढ़ाओ कि मैं आत्मा किससे मिलन मनाने जा रही हूँ, उस सर्वोच्च सर्वोपरि से, और वो तो मेरा पिता है। कितना अपनापन है, कितना नशा चढ़ जाए, मैं किसकी संतान हूँ जिसको सारी दुनिया याद करती है, भिखारी की तरह भीख मांगती है, मैं तो उस दाता की संतान हूँ, अधिकारी हूँ। तो चलिए इसी खुशी और नशे में हम मग्न होकर अपनी यात्रा आरंभ करें। तो सीधा बैठेंगे, आंखें बल खुली रहे, अपने आप बंद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हट से बंद नहीं करनी है, सामने देखना है, सामने से प्रेरणा ले सकते हैं कि ये योगिन भी परमात्मा की याद में है। अभी आपके सामने दादी आएंगे तो दादी से भी दृष्टि ले सकेंगे, क्योंकि अनेक सालों की तपस्या है तो उनसे भी शक्ति प्राप्त होगी। तो आप सामने जैसे देखते हैं, माना देखना नहीं पर एक स्थिति बन जाए कि ये आत्मा भी शिव बाबा की लगन में मग्न हो, मैं भी मग्न हो जाऊं। और देखते देखते जैसे सामने तो शिव बाबा ही आए, जो बिंदु है रूप में और सिंधु है गुणों में, उस बिंदु में समाया हुआ, और मैं भी उसमें समाते समाते वही सिंधु अपने बिंदु में धारण कर रही हूँ। अंदर में जाएं, अत्यंत हल्के हो जाएं, मैं एक आत्मा हूं, दिव्य प्रकाश ज्योति बिंदु स्वरूप, चमकता हुआ सितारा, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। भ्रकुटि के मध्य विराजमान शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र में मैं आत्मा अभिनेता की तरह सृष्टि रंग मंच पर अभिनय कर रही हूँ। अब मुझ आत्मा को वापस अपने धाम जाना है, अपने पिता परमात्मा के पास। पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति का महातत्व है, जहां सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा मूल वतन है। शांति धाम है, परम धाम है। मैं आत्मा मन और बुद्धि से उड़ान भरकर अपने धाम पहुंच जाऊं। महसूस करूं एक बेहद की दुनिया, अखंड ज्योति का प्रकाश, सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर, और इस बेहद दुनिया में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं। मैं मन और बुद्धि से अपने पिता परमात्मा को देख रहा हूं, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। उनका प्रकाश बेहद रूप में फैल रहा है और असीम शांति शांति अनुभव हो रही है। वो सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे प्यारे शिव पिता है। जिसके साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध है, अविनाशी संबंध है, अनादि संबंध है। माता पिता बंधु सखा स्वामी और सतगुरु सब संबंध एक के साथ है। मेरे प्यारे शिव पिता, आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप आत्मा शांति के धाम में शांति के सागर के सम्मुख। शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा शांति के सागर में समा रही हूं। चले जाइए सागर की गहराई में और हो जाइए अति शांत। शांति की शक्ति स्वयं में भरते जाए। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव का अनुभव कर रही हूं। आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर में समाती जाए। और पूरे सागर को स्वयं में समा दे, भरपूर हो जाए। मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान शक्ति रूप हूं, प्रकृति जीत हूं, इंद्रिय जीत हूं, माया जीत हूं, सर्व बंधनों से मुक्त हूं, अमर शक्ति हूं, स्वतंत्र हूं, सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान मैं शक्ति रूप अपने मूल स्वरूप में स्थित हूं। कितना हल्कापन, कितना न्यारापन महसूस हो रहा है। शिव पिता के सानिध्य में मैं आत्मा धन्य हो गई हूं, जो पाना था वह मैंने सब कुछ पा लिया है बाबा। स्वयं में शक्ति भरते भरते खो जाओ, शिव पिता की गोद में समा जाओ, वो सच्ची माँ भी है, उनका असीम प्यार आत्मा को अनुभव हो रहा है। उनकी बेअंत शक्ति आत्मा को मिल रही है। कितना हल्कापन, ये कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। और चले जाओ गहराई में, शांत मन में अनेक ज्ञान रत्न प्रकट होंगे, आत्मा माला माल बन जाएगी, भरपूर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। अब धीरे धीरे अपने में सर्व गुणों को, शक्तियों को भर कर वापिस लौटे साकारी दुनिया में। अपने साकारी शरीर में वापस भृकुटि के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। कर्म क्षेत्र पर और जो शक्ति संग्रहित की अब उसे कर्म में प्रकट कीजिए। इसी को कहा गया है योगः कर्मेषु कौशलम्। कर्मों की कुशलता का ही दूसरा नाम योग है। परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर कर्म कौशल बन गए तो यह जीवन सफल हो गया और जन्म जन्म सार्थक हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।